संयुक्त राष्ट्र रेडियो से प्रस्तुत है साप्ताहिक समाचार परिक्रमा। अभिवादन के साथ मैं हूं शिवानी काला। 19 अगस्त 2022 की बुलेटिन की सुर्खियां। यूएन महासचिव का आह्वान, यूक्रेन से अनाज की आपूर्ति बहाल होने के हालात में विकासशील देशों की मदद के लिए धनी देश अपने बटुए और दिल खोलें। अफगानिस्तान की महिलाओं व लड़कियों के लिए यूएन एजेंसियों की प्रतिबद्धता। विश्व मानवीय दिवस पर मानवता के सर्वश्रेष्ठ उदाहरणों का अभिवादन। यूएन मानवाधिकार प्रमुख का कॉक्सिस बाजार दौरा, सुनी रोहिंग्या शरणार्थियों की चिंताएं। और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा मंकी पॉक्स संक्रमण के 35,000 मामले सामने आए। हम आपको याद दिलाते चलें कि वैश्विक परिप्रेक्ष्य वाली मल्टीमीडिया समाचार सामग्री के लिए आप हमारी वेबसाइट पर आना ना भूलें। पता है news.un.org/hi। आप हमारा न्यूज़लेटर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे समाचार आपको हर दिन मिलते रहेंगे। अब समाचार विस्तार से। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने वैश्विक बाजारों को यूक्रेन के अनाज की आपूर्ति बहाल होने के हालात में धनी देशों का आह्वान किया है कि वो अनाज की खरीद में विकासशील देशों की मदद करें। उन्होंने ये अपील शुक्रवार को विश्व मानवीय दिवस पर यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह से की। उन्होंने गुरुवार को यूक्रेन के लवीव शहर में पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि ऐतिहासिक काला सागर अनाज कार्यक्रम को लागू करने में देखी गई सकारात्मक गति उन लोगों के लिए राजनीति की जीत दर्शाती है जो बढ़ती कीमतों के संकट में फंस गए हैं। कुछ और जानकारी के साथ महबूब खान।
कुछ सप्ताह पहले यूएन समर्थित काला सागर अनाज समझौता होने के बाद से यूक्रेन के बंदरगाहों से अनाज से भरे जहाज दुनिया के बाजारों को रवाना हो रहे हैं। यूएन प्रमुख एंटोनियो गुटेरेश ने शुक्रवार को कहा कि ओडेसा इस बात का प्रतीक है कि देश जब एक सामान्य भलाई के लिए एकजुट होकर काम करें तो क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। यूएन महासचिव ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि बंदरगाह पर मौजूद होना एक बहुत ही भावुक अनुभव है, जहां उन्होंने जहाजों में गेहूं अनाज का लदान महसूस किया। उन्होंने कहा,
It is moving to be here in Odessa. And it is especially meaningful to be here on World Humanitarian Day.
यूएन प्रमुख एंटोनियो गुटेरेश कह रहे थे कि यहाँ ओडेसा में मौजूद होना एक भावुक लम्हा है और खास तौर पर विश्व मानवीय दिवस के मौके पर यहाँ होना सार्थक है। ये बंदरगाह महीनों से वीरान पड़ा था। एक वैश्विक भोजन टोकरी से अहम परिवहन रेखा काट दी गई थी। काला सागर अनाज निर्यात समझौता उस स्थिति को बदल रहा है। एक महीने से भी कम समय में अनाजों से भरे 25 जहाज यूक्रेन के ओडेसा व अन्य बंदरगाहों से रवाना हो चुके हैं। यूएन प्रमुख एंटोनियो गुटेरेश के शब्द। ध्यान रहे कि काला सागर समझौते पर अनाज और उर्वरक निर्यात के लिए संयुक्त राष्ट्र के समर्थन से यूक्रेन, रूस, तुर्की ने लगभग एक महीने पहले हस्ताक्षर किए थे। इस बीच ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि दुनिया भर के खाद्य बाजारों में कुछ स्थिरता लौट रही है, क्योंकि वो समझौता होने के बाद से गेहूं की कीमतों में 8% तक की कमी दर्ज की गई है।
संयुक्त राष्ट्र की विभिन्न एजेंसियों का कहना है कि अफगानिस्तान में तालिबान के एक साल के शासन के दौरान महिलाओं और लड़कियों की जिंदगियों के हालात बहुत खराब हुए हैं, जिससे मानवाधिकारों के तमाम क्षेत्र प्रभावित हुए हैं। यूएन एजेंसियों ने तालिबान शासन के एक साल बाद देश की महिलाओं और लड़कियों को अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। अंशु शर्मा की ये रिपोर्ट।
महिला कल्याण के लिए सक्रिय संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूएन वुमेन की कार्यकारी निदेशिका सीमा बहाउस ने कहा है कि ये वर्ष आज़ाद व समान जीवन जीने के महिलाओं के अधिकार के लिए बढ़ते असम्मान से भरा हुआ रहा है। इस दौरान उन्हें आजीविकाओं, स्वास्थ्य देखभाल व शिक्षा तक पहुंच से वंचित रखा जाना और हिंसा से बचने के लिए भागते रहने वाला रहा है। सीमा बहाउस ने बताया कि किस तरह तालिबान ने बड़ी चतुराई और बारीकी से असमानता की नीतियां बनाई हैं, जिन्होंने अफगानिस्तान को बाकी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अलग थलग कर दिया है। लैंगिक समानता और महिला अधिकारों में दशकों के दौरान हासिल की गई प्रगति को कुछ ही महीनों में मिटा दिया गया है। दुनिया भर में केवल अफगानिस्तान ही एकमात्र ऐसा देश है जहां लड़कियों पर हाई स्कूल की शिक्षा हासिल करने पर पाबंदी है, और वास्तव में उनकी राजनीतिक भागीदारी पर भी रोक है, क्योंकि तालिबान कैबिनेट में केवल पुरुष हैं। और महिला मामलों का कोई मंत्रालय ही नहीं है। यूनिसेफ का कहना है कि अगर मौजूदा लगभग 30 लाख लड़कियों को सेकेंडरी स्कूल शिक्षा पूरी करके कार्यबल में शामिल होने का मौका दिया जाता है तो अफगान अर्थव्यवस्था को लगभग 5 अरब 40 करोड़ डॉलर के बराबर धन का फायदा होगा।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने शुक्रवार को विश्व मानवीय दिवस के अवसर पर अपने वीडियो संदेश में कहा कि दुनिया भर में जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले सैकड़ों हजारों सहायता कर्मी मानवता में सर्वश्रेष्ठ का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने कहा, मानवीय सहायता कर्मी लोकप्रियता व सुर्खियों से दूर एक बेहतर विश्व के निर्माण के लिए 24 घंटे काम करते हैं। विश्व मानवीय दिवस प्रतिवर्ष 19 अगस्त को मनाया जाता है। इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इराक के बगदाद शहर में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय पर 2003 में हुई बमबारी के बरसी मनाने के लिए 2008 में शुरू किया था। उस हमले में 22 सहायता कर्मी मारे गए थे। इस वर्ष की थीम इट टेक्स अ विलेज इस तथ्य पर प्रकाश डालती है कि जब भी और जहां भी लोग संकट में होंगे वहां ऐसे बहुत से अन्य लोग भी होंगे जो उनकी मदद के लिए आगे आएंगे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने कहा, इस गांव से मतलब है वो लोग जो आपदा आने पर हमेशा सबसे पहले मदद के लिए तैयार रहते हैं, पड़ोसी पड़ोसियों की मदद करते हैं। इसमें वो वैश्विक समुदाय शामिल हैं जो पुनर्निर्माण में सहयोग के लिए एकजुट होकर सामने आता है। महासचिव ने कहा कि विश्व मानवीय दिवस हर जगह मौजूद इन मानवीय सहायता कर्मियों की सराहना करने का एक अवसर है। स्मरण उत्सव के हिस्से के रूप में संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों के कार्यालय ओचा ने जरूरतमंद लोगों के साथ जनता की एकजुटता दिखाने और इस काम में जुटे लोगों की सराहना करने के लिए एक सप्ताह तक चलने वाला सोशल मीडिया अभियान इट टेक्स अ विलेज शुरू किया, जो संकट में फंसे बच्चों के लिए जीवन रेखा का काम करते हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त मिशेल बैशलेट ने बांग्लादेश की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा के दौरान मंगलवार को अनेक अधिकारियों, नागरिक समाज के प्रतिनिधियों और रोहिंग्या शरणार्थियों के साथ मुलाकात करके उनकी स्थिति के बारे में ताज़ा जानकारी हासिल की और उनकी चिंताएं सुनी। कुछ और जानकारी के साथ अंशु शर्मा।
यूएन मानवाधिकार प्रमुख मिशेल बाशलेट ने कॉक्सस बाजार में उन रोहिंग्या शरणार्थियों के आवास शिविरों का दौरा किया जो म्यांमार में 2017 में भयानक दबाव और मानवाधिकारों के गंभीर हनन के बाद कुछ सुरक्षा पाने के लिए भागकर बांग्लादेश पहुंचे थे। संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष मानवाधिकार अधिकारी ने धार्मिक नेताओं के साथ साथ महिलाओं और युवा समूहों से भी मुलाकात की जिन्होंने अपनी चिंताएं और आशाएं उनके साथ बांटी। घर वापसी के इच्छुक 15 से 18 वर्ष की आयु के युवा स्वयंसेवकों ने शिक्षा एवं नागरिक दर्जे के साथ म्यांमार लौटने की अपनी इच्छा जाहिर की। फिलहाल मौजूदा आर्थिक संकट और यूक्रेन में युद्ध ने खाद्य लागत को और बढ़ा दिया है। मिशेल बाशलेट ने कहा कि विश्व को अपना समर्थन जारी रखना चाहिए और यह सुनिश्चित करना होगा कि मौजूदा हालात को देखते हुए क्या वो अधिक सहायता कर सकते हैं।
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि मंकीपॉक्स के संक्रमण मामले दुनिया भर में बढ़ रहे हैं और अभी तक 92 देशों व क्षेत्रों में 35,000 मामले सामने आ चुके हैं। 12 लोगों की मौत भी हुई है। यूएन स्वास्थ्य एजेंसी के मुखिया डॉक्टर टेड्रोस एडेनाम गेब्रेसिस ने जिनेवा में अपनी नियमित प्रेस ब्रीफिंग में कहा,
ऑलमोस्ट 7,500 केसेस वर रिपोर्टेड लास्ट वीक, अ 20% इंक्रीज।
डॉक्टर टेड्रोस कह रहे थे कि लगभग 7,500 मामले गत सप्ताह दर्ज किए गए, जो कि उससे पहले के सप्ताह की तुलना में लगभग 20% की बढ़ोतरी थी। मंकीपॉक्स के संक्रमण के ज्यादातर मामले यूरोप और अमेरिका क्षेत्र से रिपोर्ट हो रहे हैं और अधिकतर मामले ऐसे पुरुषों में देखे जा रहे हैं जो पुरुषों के साथ संभोग करते हैं।
यूएन स्वास्थ्य एजेंसी के मुखिया डॉक्टर टेड्रोस एडेनाम गेब्रेसिस का वक्तव्य। फिलहाल वैश्विक स्तर पर मंकीपॉक्स की वैक्सीन की आपूर्ति सीमित है और वैक्सीन की प्रभावशीलता के बारे में भी सीमित आंकड़े उपलब्ध हैं। डॉक्टर टेड्रोस ने ये भी कहा कि तमाम देशों का मुख्य ध्यान ये सुनिश्चित करने पर होना चाहिए कि वो मंकीपॉक्स के लिए तैयार हैं और सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रभावशाली उपकरणों से उसे रोकने में भी समर्थ हों। पिछले 4 सप्ताहों के दौरान कोविड-19 से होने वाली मौतों की संख्या में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो कि 35% रही है। केवल पिछले 1 सप्ताह के दौरान ही 15,000 जिंदगियां खोई जा चुकी हैं। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अब शिवानी काला को दीजिए इजाजत।